పదవే ప్రదోన్నరోపశ్రియం ప్రాప్త షోడశ తీర్థకృత్వమఖిలం త్రైలోక్య పూజాస్పదం యస్తాపత్ర శాంతిత స్వయమిత శాంతి ప్రశాంతాత్మనా శాంతి యచ్చతి తం నమామి పరమం శాంతి జినం శాంతయే. బోలే ఖజారా శ్రీ శాంతినాథ్ భగవాన్ కి, బోలే అక్షరాచార్య శ్రీ శాంతి సాగర్ మహారాజ్ కి, బోలే గణధరాచార్య శ్రీ కుంతి సాగర్ మహారాజ్ కి, బోలే దీక్షా గురు శ్రీ ఆచార్య శ్రీ పద్మనంది మహారాజ్ కి. మహారాజ్ క్షమావాణి కే దిన్ ఔర్ పరీక్షన్ సే పహలే క్షమా పర్వ ఆప్నే పర్వ మనాయా ఔర్ ఆజ్ అంతిమ క్షమావాణి పర్వ భీ హమ్ క్షమా సాగర్ మహారాజ్ కి సాన్నిధ్య మే ఏవా అమిత్ సాగర్ కే మహారాజ్ కే సాన్నిధ్య మే మనానే కే లే జా రహే హై. బోలే ఎక్సాడ్ ఆశ్రయ ముని శ్రీ క్షమా సాగర్ మహారాజ్ కి. వాస్తవ మే ఆజ్ క్షమా వాణి పర్వ కో సార్థక కర్నే కే లియే హమ్ సబ్ ఇకట్ఠే హువే హై. తో ఆజ్ కే దిన్ వాస్తవ మే హమేరే మన కే అందర్ అజ్ఞానతా కే కారణ యా कसाय के कारण या प्रमादवश के जो कोई भी अपराध हुआ है, उन सबकी हमको मान वचन काय और निर्मल भाव के साथ क्षमा मांगनी है. जब तक हम क्षमा नहीं मांगेंगे तब तक हमारे हृदय में पाप की प्रवृत्तियां बढ़ती जाती रहती है और उस पाप के भार से ये जीव का पतन हो जाता है. इसलिए आचार्य ने कहा है कि अपराध गृहस्थ अवस्था में आप लोग रहते तो अपराध हो ही जाता है, उन अपराधों की क्षमा निर्मल हृदय के साथ मांग करके अपनी आत्मा के जो भार है, कर्म रूपी भार है, उसको हल्का करें, जिसके कारण से आत्मा का उद्वगमन हो सकता है. जब तक हम इस प्रकार से क्षमा नहीं मांगेंगे तब तक हमारा पतन है. आचार्य भगवान कहते हैं सत्य से मैत्री गुणीसु प्रमोदम, सभी जीवों के प्रति मेरा मैत्री भाव होना चाहिए. आज समाज में, कुटुंब में, परिवार में देखते हैं तो झगड़े का मूल है एक कसाय प्रमाद के कारण. आज हम घर के अंदर छोटी सी बात को लेकर के गलती करते हैं, त्रुटियां हो जाती है, अपराध हो जाता है तो क्षमा नहीं मांगते हैं, जिसके कारण से कुटुंब में भाई बहन से, माता से, पिता से, किसी से भी बनता नहीं है. इतना ही समाज के साथ भी नहीं बनता है और देश देश में झगड़ा हो जाता है. तो कहने का मतलब यही है कि आज हम क्षमावाणी पर्व मनाने के लिए आए हैं. तो सब जीवों से खम्मा में सवे जीवानाम सवे जीवा खमंत में मित्ते में सब भूदेशु व्यरम अज्यम न केनवी, सब जीव मुझे, सब जीवों से मैं क्षमा करता हूँ और सब जीव मुझे क्षमा करे, मेरा सब जीवों से मैत्री भाव रहे और सब जीव मेरा किसी से शत्रुता न हो, वैर भाव न हो और इस भाव के साथ मेरा मैत्री भाव न पवित्र जन मुझे हियामा वहा करे, ऐसी भावनाओं के साथ मैं अपना विराम लेता हूँ. बोले महावीर भगवान की.
परम पूज्य 108 मुनि श्री रविनंदन जी महाराज की जय. मैं परम पूज्य 108 मुनि श्री भव्य सागर जी महाराज के चरणों में विनम्र निवेदन करता हुआ आपसे प्रवचन के लिए अनुरोध कर रहा हूँ. श्रीमान परम पूज्य 108 मुनि श्री भव्य सागर जी महाराज,
तीन भुवन में सार बीत राग विज्ञानता, शिव स्वरूप स्वीकार नमो त्रियोग क्षमा. बोलिए 1008 श्री भगवान पार्श्वनाथ स्वामी की. बोलिए 108 श्री परम पूजाचार्य श्री विद्यासागर महाराज की. बोलिए 108 श्री परम पूज गुरुवर श्री नवी सागर महाराज की. बोलिए परम पूज एक सियार श्री मुनि हमसागर महाराज की, बोलिए परम पूज एक सियार श्री मुनि क्षमा सागर महाराज की। जो वस्तु को जला दे, जो वस्तु को जला दे उसे आग कहते हैं, और जो वस्तु को जला दे उसे आग कहते हैं, और जो जीवन को जला दे उसे राख कहते हैं, जो जीवन को जला दे उसे राख कहते हैं। तो कहते हैं यह आग राग दह सदा ताते समामित से ये चिर भजे बसे कसाय अब तो त्याग निज पर बे। बहुत अच्छी खुशी की बात है कि दस लाक्षण पढ़ने और जो श्रावक भाई साधन में और संयम के लिए पालन करें उनका बड़ा भाग्य है, और ऐसे पद के ऊपर संयम से रहकर और व्रत उपवास करें। आज थोड़ा थोड़ा कर रहे, कल आगे और भी बढ़ेंगे, पर करें बहुत अच्छा है, लेकिन अपना धर्म बेचे नहीं। हम थोड़ी सी भावकता में आकर के और अगर हम सम्मान में भटक जाएं तो हमारा वह व्रत उपवास सार्थक नहीं रहेगा। हमने अपनी आत्मा के लिए जलाया है, कर्मों के लिए जलाने के लिए कृष किया है, हम अपने कर्म जलाने के लिए व्रत उपवास किया है, हम किसी के लिए दिखाने के लिए कि हमारा सम्मान हो रहा है हमने व्रत उपवास किया है, इस बात को भूल जाना। इसमें कोई बुराई की बात नहीं है, आपके हित की बात है, अच्छी विचार से विचार करना। साधु भी व्रत उपवास करते हैं, आप कितना ही सम्मान विनय करो अपनी आत्मा से उसके लिए मूर्छा से छोड़े रहते हैं। क्यों छोड़े रहते हैं? हमने अपने कर्म जलाने के लिए पांच पापों का त्याग किया है, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, इसीलिए पांचों पापों के लिए आपने छोड़कर व्रत उपवास किया है कि हम 10 दिन तो कम से कम इन लोभ कसायों में ना फंसेंगे, राग दोष नहीं करेंगे, क्रोध कसाय नहीं करेंगे, मान नहीं करेंगे। बहुत अच्छा है कि आपने 12 महीना में 10 दिन को त्याग किया, धन्यवाद है आपके लिए। यही तो कहना है, एक थोड़ी सी बात बोलेंगे, ज्यादा नहीं बोलेंगे। एक राजा ने और अपने नौकर के लिए दूसरे राजा के यहां एक पत्र भेजा। वह पत्र लेकर के, पहले जमाने में कोई गाड़ियां मोटर नहीं चलती थी, पैदल जाते थे। वो जा रहा है, उसके लिए गर्मी के कारण तृषा ने सताया, बहुत भेजा प्यास उसके लिए लगी, और वह एक जंगल में भटक गया, कहीं पानी का साधन नहीं मिला, और वह व्यक्ति जाकर एक वृक्ष की छाया में बैठा कि लेटा, और उसको कुछ होश नहीं रहा। विचार करने की बड़ी भारी बात है, बात तो छोटी है, उस वृक्ष के ऊपर बनचर माने बंदर बैठे हुए थे। एक बंदर ने विचार किया कि यह व्यक्ति प्यासा है, बिना जल के यह प्राण खो देगा, उसके लिए त्रियंच के लिए दया आई और वह वृक्ष से छलांग मारता हुआ जहां उसका देखा हुआ सरोवर था जाके उस सरोवर में छलांग मारकर कूद गया। उस बनचर ने अपना शरीर निगो लिया और आकर उस मुसाफिर के ऊपर बैठ गया, बैठ करके अपना शरीर हलाया ढुलाया और उसके मुंह पे पानी निचड़ा, उसकी आंखों में पानी गया, उसकी आंख खुल गई। जिस प्रकार की कोई रोगी होता है और अशक्त है, जाने वाला है, श्वासें घुट रही हैं और उसके लिए मंत्रा देते हैं वैद्य, उससे जीवन होता है तो बच जाता है। इस प्रकार वह पंथी आंख खोलता है, वह बनचर त्रियंच अज्ञानी जिसने कोई स्कूल में पढ़ा लिखा नहीं है, हम तो पढ़ लिखते हैं, विवेकवान हैं, उसने हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ कर खींचा तो उसने समझा कहीं पानी बतलाता है, पीछे पीछे जाता है, उसने उसके लिए सरोवर बता दिया, इसमें तुम पानी। उसे हलकारे ने पानी पिया, स्नान किया और जीवन सफल माना, देखो बहुत अच्छा है। थोड़ी देर में क्या सोचता है, ये मानव बड़ा स्वार्थी है, स्वार्थ लाग करे से पीटी, बड़ा स्वार्थी है मानव। सोचा कि अब आगे चल के मेरे लिए पानी मिला या न मिला तो मेरा जीवन खराब हो जाएगा। बंदर तो बैठा था बेचारा, खुशी में बैठा था कि मैंने इसका उपकार किया है, ये धन्यवाद देगा हमारे लिए। और उस मनुष्य ने विवेकी बन के अविवेकी हो गया, जिसने स्कूल में भी पढ़ा लिखा था, गुरुओं की बात भी सुनी थी, उसने उस बंदर के लिए गोली मार दी। विचार कीजिए, उसकी खाल खींचकर उसकी खाल खींचकर एक बटुआ बना लिया और उसमें पानी भर लिया। उसने बतलाइए आप वह मनुष्य है कि वह त्रियंच है, और वह त्रियंच मनुष्य से बड़ा है, उसने कितना उपकार किया, ऐसा ये क्षमावानी का पर्व है भाई। कोई अपने साथ थोड़ा हाथ पकड़कर अपना सहारा देवे, उसका अपकार मत करो, उपकार मानो। और ब्रह्मेश से कभी कोई बात करता है सवेरे से शाम तक, क्षमा मांगो, और शाम तक नहीं मांगी तो 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन, महीना भर तक क्षमा कराओ, 6 महीना तक चली जाएगी तो बहुत कसाय बढ़ जाएगी। इसलिए कहते हैं कि क्षमा बरन खो चाहिए छोटों को उत्पात। तुम लोग बहुत बड़े हो, श्रावक हो, समझदार हो, पढ़े लिखे हो, धनवान हो, रूपवान हो, गुणवान हो, पर अपने ऐसे गुणों के लिए लेकर के क्षति नहीं करना धर्म की, इतना ध्यान रखना। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।
परम पूज्य 108 मुनि श्री भव्य सागर जी महाराज की जय। जो महानुभाव पीछे खड़े हैं उनसे अनुरोध है, कृपया पांडाल में विराजने का कष्ट करें। अब मैं परम पूज्य 108 मुनि श्री अमीन सागर जी महाराज के चरणों में वंदना करता हुआ आपसे प्रवचन हेतु अनुरोध कर रहा हूं। मुनि श्री अमीन सागर जी महाराज,
संचालक महोदय की बात आप तक पहुंची है, शायद आप शायद अभी उपराष्ट्रपति का चुनाव भी निकल गया और राष्ट्रपति का भी निकल गया, क्या आप प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए वहां खड़े हैं क्या? ये कोई राजनेताओं की सभा नहीं है, धर्म सभा में बड़ी विनय से बैठ करके ही धर्म का श्रवण करना चाहिए।
यं शैवा समुपाश्यति सेवितिः ब्रह्मेति वेदान्तनः। बौद्धा बुद्धैति प्रमाणपटवः करतीति मयि मांसिकः। अरिहन्नित्य तुजे निशासन रता कर्मीति मीमांसिका। सोयम नो विदिधातु वांछित फलम् त्रैलोकनाथो हरिः। जलदेवाद्रिखज्जारश्रयादनाथ भगवान की, जलदेवाद्रिखज्जारश्र महावीर भगवान की, जलो द्वादशांग मई जिनवाणी माता की, जलो प्रभु चार चक्रवर्ती आचार्य परोशी शांत सागर जी महाराज की, जलो प्रभु आचार्य गुरुवार श्रोमणि धर्म सागर जी महाराज की, जलो संत श्रोमणि आचार्य श्री विद्या सागर जी महाराज की, जलो प्रभुज्य बात्सल्य मूर्ति श्री क्षमा सागर जी महाराज की, जलो समस्त दिगंबर तीन का नौकुर महाराज की, समस्त विश्व वर्तमान परिस्थितियों में पर्यावरण से दूर भाग रहा है, अब पर्यावरण उसका प्रदूषित हो रहा है। वैज्ञानिक लोग इस बात से चिंतित हैं कि मनुष्य के जो जीवन जीने के साधन हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु और वनस्पति, इनमें जो मिलावट आ रही है, जो प्रदूषण हो रहा है, उसे किस प्रकार से दूर किया जाए। जिस प्रकार बहिरंग में प्रदूषण का निराकरण करने के लिए वैज्ञानिक उपाय खोजते हैं, उसी प्रकार हमारे धर्म आचार्यों ने अंतरंग में जो हमारे प्रदूषण उत्पन्न होता है, उसको दूर करने के लिए पर्युषण पर्व आता है। मन वचन तन धन और आत्मन, इनके अंदर प्रदूषण उत्पन्न हो गया है। इन सब का संशोधन कैसे हो, तो पर्युषण पर्व की प्रक्रिया को अपनाया गया, जिसके माध्यम से आपके अंतरंग का प्रदूषण दूर हो सकता है। और अभी आप सब शहरवासियों ने पूज्य क्षमा सागर जी महाराज के प्रवचन सुनकर के, और भी अन्य साधु संत सन्यासी आपके जयपुर शहर में आए हैं, सभी धर्मों के साधु संत प्रवचन कर रहे हैं। आज आपको यहां इकट्ठा करने का मकसद क्या है,
प्रवचन प्रवचन सुन लिया, पर्युषण मना लिया। आज यहां इकट्ठा करने का मकसद है कि आज आपको यहां नापा जाएगा कि आपके अंदर कितना प्रदूषण निकल गया और कितना बाकी है। प्रैक्टिकली में देखा जाएगा कि हमने 10 दिन में जिन कसाईयों के बारे में सुना, वाणी की सभ्यता के बारे में सुना, संयम तप त्याग के बारे में सुना, अकिंचन और ब्रह्मचर्य के बारे में सुना, वो 10 धर्म हमारे अंदर कितने उतरे, क्षमा धर्म से प्रारंभ हुए, उत्तम क्षमा धर्म से प्रारंभ हुए और हम लोग क्षमा वाणी पर इसका समापन कर रहे हैं। हमारे मन वचन काय में क्षमा का आविर्भाव होना चाहिए। पूजाएं की वीणे दुष्ट अनेक बांध मार बहुविध करे, धरिए क्षमा विवेक गोपना की जपरी। हमने अपने क्षमा धर्म को कितना पाया है, क्षमा धर्म की परीक्षा, क्षमा गुण की परीक्षा विपरीत परिस्थितियों में उत्पन्न होती है, तब नापी जाती है। वैसे आप बैठे रहे शांत, आपसे कोई कुछ नहीं बोल रहा है तो आप शांत थोड़ी कहलाएंगे। आपके सामने वो वातावरण तैयार कर दिया जाए कि जो आपकी कल्चर और सारी मानसिकता के विपरीत है, उस परिस्थिति में आप अपने आप को कितना स्थिर रख सकते हैं, हम अपने आप को कितना स्थिर रख सकते हैं, उस क्षमा की परीक्षा। क्षमा के कई रूपक होते हैं। हम ये सब सामाजिक एक प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, एक सामाजिक क्षमा का एक रूपक लिया है। कल शाम को लोग पारिवारिक क्षमा पर गए थे, जो जिनसे उनकी जान और पहचान थी नहीं पहुंच पाई तो एक टेलीफोन कर दिया, भाई साहब क्या करें, महाराज लोग आए हुए, हम बहुत व्यस्त हो गए, हम नहीं आ पाए, हमको क्षमा करना। एक पोस्ट कार्ड लेकर के डाल दिया। कौटुंबिक पारिवारिक राष्ट्रीय नेता लोग भी क्षमा करते हैं, क्षमा मांगते हैं। औद्योगिक व्यापार करते हैं जिनसे आपके संबंध हो जाते हैं, व्यवहारिक क्षमा भी आप करते हैं। आप निकल रहे हैं कहीं पैर लग गया कुछ, भाई साहब क्षमा करना, ये सब क्षमा के रूपक हैं। लेकिन वास्तविक क्षमा का चिंतन किया जाए, जो जैन दर्शन की क्षमा है या भगवान महावीर की क्षमा, उत्तम क्षमा जिसका उन्होंने रूपक पहनाया है, वो व्यक्ति संस्था समाज देश इन सबसे ऊपर उठ करके है। भगवान महावीर की क्षमा प्राणी मात्र की क्षमा है और क्षमा वास्तव में उन्हीं से मांगना चाहिए। प्राणी मात्र के प्रति क्षमा का भाव हो, हम क्षमा किससे मांगते हैं, कभी आपने चिंतन किया? जिनसे हमारी मित्रता होती है, दोस्ती होती है, कभी आपने इस पेड़ के पास जाकर के क्षमा मांगी है? कभी नहीं मांगी होगी, क्यों? उससे हमारी कोई मित्रता और दोस्ती नहीं। लेकिन बंधु, प्रकृति के ये पांच तत्व व्यक्ति के सबसे बड़े मित्र हैं, जो 2400 घंटे आपको जीवन दे रहे हैं।
ये सबसे बड़े मित्र हैं आपके, हमारे सबके, जिनको हम अपने जीवन में प्रयोग कर रहे हैं। बिना किसी उनको धन्यवाद दिए वो हमारा उपकार कर रहे हैं, हम कभी उनको धन्यवाद नहीं देते। कोई व्यक्ति धूप से घबराया हुआ छाया में जाकर के बैठा है और जाने लगा, तो कभी किसी ने उस वृक्ष को धन्यवाद दिया? नहीं दिया होगा, क्योंकि हमने कभी उसे माना नहीं कि ये जीव है या इसने मेरा उपकार किया है। और सोचा होगा कि अभी जैसे महाराज ने कहा कि बंदर ने पानी पिलाया और बंदर को मार करके उसी में पानी भर करके ले, देखा फूल अच्छा है उसमें फल लगे, दो चार और मार करके तोड़ करके ले लिए। सोचने की बात है, केवल मनुष्य और ये जैन समाज से ही क्षमा का संबंध नहीं है। प्राणी मात्र के प्रति जो पंच स्थावर जीव हैं, जो बोल नहीं सकते हैं, हम बोलने वाले से इसलिए क्षमा मांगते, कहीं ऐसा नहीं हो वो टोक दे कि तुमने हमसे क्षमा नहीं मांगी। हमारा अहंकार पुष्ट होता है, अरे वो आया था हमसे क्षमा मांग गया। क्षमा मांगना भी तो एक फॉर्मेलिटी है और एक हमारा प्रस्टेजिशु है। यदि वास्तव में आप अपने जीवन में क्षमा भाव की बात करते हैं, तो एक इंद्रिय जीवों के प्रति क्षमा का भाव जागृत कर लेना। वे आपके परम मित्र हैं, उनके साथ आप जो शत्रुता का व्यवहार कर रहे हैं, उस शत्रुता का व्यवहार करना छोड़ देना, यही आपकी उत्तम क्षमा है। साइंटिस्ट कह रहे हैं कि 25 वर्ष बाद ये पानी का स्तर नीचे निकल जाएगा और आपको पानी नहीं मिलेगा, युद्ध होगा पानी के पीछे। क्या आप बाथरूम में जब नहाते हैं तो कभी विचार करते हैं कि नल के नीचे डायरेक्ट बैठ गए, फुहारा के नीचे डायरेक्ट बैठ गए, आपने अपने बाथरूम में एक छोटा सा टप रख रखा है पूरा भरा और उसमें नहाए, कभी उस समय विचार किया कि ये पानी कितना कीमती है, इसको हम अनावश्यक प्रयोग कर रहे हैं और यही हमारी अगले आने वाली दो पीढ़ी बाद हमारे बच्चों को नहीं मिलेगा। थोड़ा विचार करके देखना। आज जितने भी यहां महानुभाव माता बहने बैठी हैं, यदि वास्तव में उत्तम क्षमा, हम जानते कि तुम तो कितना ही लड़ लोगे और लड़ने में हम लोग साधु निमित्त बन जाते हैं या धर्म निमित्त बनता है, ये ध्यान रखना। लड़ाई होती है तो हम मंदिर नहीं जाएंगे, हम महाराज के पास नहीं जाएंगे, वो ये सब चल जाता है आपका। लेकिन शाम को आप किसी के यहां पार्टी हो तो सब एक थाली में खाते हुए मिलेंगे, फिर वो ये नहीं कहेंगे उनको बुलाओगे तो हम नहीं जाएंगे, वहां आप सब मिल जाएंगे एक ही थाली के चट्टे बट्टे। लोग कहते हैं कि पांचों उंगली बराबर नहीं होती है, और हम कहते जब मुंह में जाती तो पांचों बराबर हो जाती। तुम खाने के लिए टूट पड़ोगे, वाह बराबर हो जाओगे, सब भूल जाओगे भेदभाव। उन एक इंद्रिय जीवों के प्रति, दो इंद्रिय जीवों के प्रति जो हमारे इस कल्चर को, इस क्लाइमेट को सुरक्षित रखते हैं, उनके प्रति आपके मन में क्या करुणा है और क्या मैत्रता है? क्या आपने मित्र के ऊपर सारा बोझ लादते हैं? क्या मित्र को मित्र की तरह सहयोग करते हैं, उसे अनावश्यक प्रयोग नहीं करते? बाथरूम में जब भी घुसे दो बाल्टी रख लें, एक में पानी भर रहा है एक भरी भरने के लिए रख दें, और प्रमाण कर ले कि हम एक बाल्टी पानी से नहाएंगे। आज आपको पानी इतना सस्ता और सुलभ दिख रहा है क्योंकि आप बड़े आदमी, आपने अपने घर में ट्यूबवेल लगा रखा है, सिवर सिवेल लगा रखा है। जरा गांव की हालत देख करके आइए, आप तो यहां सेठानियां बनी बैठी है बेचारी, वो महिलाएं दो दो किलोमीटर से पानी भर करके गर्मी में धूप में लाती है, और ये सब आप उसमें निमित्त बन रहे हैं, आप अनावश्यक पानी का व्यवहार कर रहे हैं। सरकार कह रही है बिजली बचाओ पानी बचाओ सबको पढ़ाओ, पूज्यश्री आए कितने लोगों ने पढ़ा? प्रवचन की बात अलग है, एक सार्वजनिक एक ठीक है, लेकिन अकेले में जाकर के महाराज जी हम तत्वार से सीखना चाहते हैं, कोई भक्ता मर्जी पढ़ना चाहते हैं, आप हमें पढ़ाइए। क्या आप अपने जीवन का एक घंटा समय भी आपने अपने आपने को नहीं दे पाए? आपने क्या सीखा आपने अपने धर्म के लिए? ये आपका मानसिक प्रदूषण कैसे निकलेगा? आलोचना पाठ में
वही बात लिखी है। पूरा आलोचना पाठ पंच स्थावर जी विकलत रहे इन सब के, हां हां मैं दुठ अपराधी तसर जीवन राशि विराधी। साधु लोग क्या करते हैं, सुबह से शाम तक वही काम करते हैं। हाथ उठ के हाथ उठ चिंतियम भाष्यम चहा उठम अंतो अंतो ढज्जमी पच्छुत्ता मेड़ वेदंतो। एक इंद्री से लेकर के और सैनी पंचेंद्री सैनी जैनी अजैनी सब उसमें आ गए, सबसे क्षमा मांगते हैं। सीखो कुछ, जीवन बहुत थोड़ा है, हमें बहुत कुछ करना है, अपने जीवन से बहुत कुछ लेना है। संसार में बहुत वस्तुएं जानी पहचानी होती हैं, संसार में बहुत वस्तुएं जानी पहचानी होती हैं, संसार में बहुत वस्तुएं अनजानी भी होती हैं, संसार में बहुत वस्तुएं अनजानी भी होती हैं। कमर जैसे तो घर घर में है पत्थर बरसाने वाले, कमर जैसे तो घर घर में है पत्थर बरसाने वाले, पारस बनने में ही क्षमावाणी होती है, पारस बनने में ही क्षमावाणी होती है। हम थोड़ा अपने आप को पारस बना करके देखें, उस मारुति को बना करके देखें, कमर तो आपको बहुत मिल जाएंगे लेकिन कुछ सहन करने वाले अपने आप को बना करके देखें। फिर हमारा उपकार करता है, फिर डंडा खाता है पत्थर खाता है और क्या मीठे फल देता है। सब कुछ सहन करने के बाद वो हमें देता है। क्या हम अपने जीवन को कभी ऐसा कर पाए, प्रकृति से क्षमा भाव का उदाहरण अपने जीवन में ले पाए, उपकार का भाव अपने जीवन में अवतरित कर पाए। वास्तव में बैर भाव क्या है, बैर भाव का कारण क्या है, कसायों का कारण क्या है? एक हमारी अधिकार वृत्ति, तो उससे हमारे कसायों का वैर का संयोजन हो जाता है। और यदि हम वास्तव में कर्तव्य वृत्ति में जीते हैं तो कसायों का कहीं आविर्भाव नहीं होता है। आज जितने भी झगड़े हैं पदों को लेकर के हैं और हमारी भी बैर किस कारण से है, शत्रुता किस कारण से है, तुच्छ वस्तुओं के कारण हमारी शत्रुता है। बैर के कारण को पहचाने, अजीव द्रव्य हमारा बैर का कारण बना हुआ है, उनने हमारे रुपए खा लिए हमने उसकी शत्रुता, उनने हमको हमारा सोना रख लिया उनने हमारे बर्तन ले लिए। घर में ये न्यारा पाता होता है सब जानते हैं। हमेशा प्रवचन में एक बात जरूर कहता हूं, यहां बहुत लोग बैठे होंगे ना जिन्हें दादी का नानी का मामा का और इतिहास अभी तो बहुत कम हो गया ऐसे, क्योंकि अब ज्यादा रहे ना, ये दो हैं तो उन्हीं का है। पहले पांच पांच सात सात भाई होते थे, उनमें लड़ाई झगड़े ये वो सब दुनिया का होता था, देवरानी जिठानी सब हो गया, जमीन बट गई जायदाद बट गई सब कुछ बट गया, लेकिन झगड़ा किस बात पर हुआ, एक पीतल की परात के पीछे झगड़ा, की एक पीतल की हंड की हम लेंगे, नहीं मिला तो हम मरेंगे और मर गए, नहीं मिला तो मर भी गए, जहर खा लिया पानी में कूद गए अगली लगा ली। मैं पूछता हूं कि जिस पीतल की परात के पीछे और पीतल के हंडे के पीछे आपकी नानी और आपकी दादी मरी थी, वो आज पीतल की परात और पीतल का हंडा आपके घर में है? नहीं है, सब बेच दिया, स्टील आ गया। और आज जो स्टील के पीछे आप लड़ रहे हैं, बहु दहेज नहीं लाई, अरे क्या चार दस एक हजार दो हजार रुपए के बर्तन पूरा घर भर जाएगा, लेकिन उसके पीछे आप इतनी अंदर अपने आप को क्लेशित करती है। आप स्टील के बर्तन जोड़ रही है, 25 साल बाद स्टील के बर्तन भी नहीं मिलेंगे। पिज्जा आ गया बना बनाया, खाओ पियो राम राम, कौन बर्तन में बनाएगा, किसके लिए बर्तन की जरूरत पड़ेगी? सोचिए आप, यदि वास्तव में हम अपने उत्तम धर्म को प्राप्त करना चाहते हैं, उत्तम क्षमा धर्म को प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपने उस बाहरी जीवन पर चिंतन करें जिसके पीछे हम क्लेश करते हैं या कषाय बांधते हैं या बैर बांधते हैं। उदार बनना सीखें, उदार वृत्ति से हमारे जीवन में उत्तम क्षमा भाव आएगा। इस पावन पर्वण पर्व की समाप्ति पर उत्तम क्षमा की बेला में पूज्य क्षमा सागर जी महाराज, जो वात्सल्य मूर्ति हैं, भव्य सागर जी महाराज जो भोली मूर्ति हैं, रवि नंदी महाराज, मार्दव नंदी महाराज, जो बिल्कुल सरलता की मूर्ति हैं। और यदि मैं अपने बारे में कहूं तो आप लोग हंसेंगे, हमारे तीनों संत लगभग 10 वर्ष से हमारे साथ है। जब भी किसी संग में जाते हैं पूछते हैं महाराज ये रत्न कहां से उठा लाए, मैं कहता हूं भैया चौराहे पर पड़े मिले थे उठा लाए। हमारे अंदर तो तब भी आवेग आ जाता है, क्या करें समाज की व्यवस्था है कुछ ऐसी, हम सबको अपने अनुकूल चलाना चाहते हैं, हमारी कमी है, लेकिन कुछ व्यवस्था बनाने के लिए कुछ उत्तेजना हम दिखाते हैं, कुछ लोगों को बुरा भी लग जाता है, चर्चा भी करते हैं महाराज, ठीक है भाई उनको लगता है बुरा लगता है, लेकिन हम भी जो बने हैं अपने गुरु की डांट खा के बने हैं, ऐसे ही नहीं बन गए इस पद पर आए हैं। जो गुरु की डांट नहीं खा सकता है वो एक उत्तम शिष्य भी नहीं बन सकता है। तो हो सकता है हमारे द्वारा इन महान मुद्राओं के प्रति कोई अवज्ञा और तिरस्कार का भाव आया हो, उनसे हम सबसे प्रथम क्षमा मांगते हैं। और विशाल जनमेदनी जयपुरवासी, उनके प्रति भी हमारा कोई भाव ऐसा हो और उनको लगा हो कि महाराज की ये क्रिया या चर्या ये वचन अच्छे नहीं, प्रवचन अच्छे नहीं, तो उनसे भी हम क्षमा चाहते हैं। और समस्त जयपुरवासी जिन्होंने अखबार में भी प्रवचन के माध्यम से पढ़ा है या टीवी में देखा है, तो उनकी धर्म संस्कृति या उनकी मान्यता के खिलाफ भी यदि कोई भांत उनकी पीड़ा पहुंच गई हो तो उन सबसे भी हम क्षमा मांगते हैं। और प्रवचन को सुनने वाले विचारों को ढोना पड़ता है, माइक लगा देते हैं, उन्होंने नहीं चाहते नहीं सुनना चाहते, लेकिन उनके घर के सामने माइक लगा है तो बड़ी पीड़ा होती है उनको, तार काट देते हैं, लड़ने आ जाते हैं, पुलिस वालों को ले आते हैं कि हमारे घर के सामने धर्म का प्रवचन हो रहा है। तो उनसे भी हम क्षमा चाहते कि धर्म ने आपको पीड़ा दी और हम उस पीड़ा में कारण बने, तो उनसे भी क्षमा चाहते हैं। और एक इंद्री से लेकर के पंचेंद्री जीव तक जिनने भी हमारे इस जीवन को जीवन दान देने के लिए हमारे लिए कार्य करते हैं, उनको भी यदि हमने अनावश्यक प्रयोग किया हो, उनको कष्ट पहुंचा हमारी तरफ से, तो उनसे भी हम क्षमा चाहते हैं। जो लोग उत्तम क्षमावाणी धर्म की
जगह परम पूज्य 108 मुनि
कुर जनना भव बीजांकुर जनना रागाद्याक्षयमुपागतायस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी, गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जलगे सयाने उजूं सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं के सतत केवल ज्ञान पाने।
बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की, आचार्य धर्म सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोगों ने पिछले कई दिनों से एक साथ मिल बैठकर अपने जीवन को अच्छा बनाने की प्रक्रिया पर विचार किया है। हमारे जीवन की यात्रा तो ऐसी है जैसे कि एक बीज वृक्ष बनता है। यदि हम बीज से वृक्ष तक की यात्रा जैसी होती है ठीक वैसा ही अपने जीवन को भी बना लें तो हमारा जीवन बहुत अच्छा बन सकता है। एक बीज जमीन में गिरता है, जमीन उसे धारण करती है, उसे सहन करती है। यही जीवन में क्षमा का उपदेश है। बीज यदि अपनी कठोरता नहीं छोड़े और गलने को तैयार ना हो तो वह अंकुरित नहीं हो सकता। हमारे जीवन में भी यदि मृदुता और कोमलता ना हो, हम अपनी कठोरता ना छोड़ें तो हमारे भीतर कुछ नया उत्पन्न नहीं हो सकता। वह बीज अंकुरित होने के लिए जमीन को तोड़ करके बाहर आता है, लेकिन यदि वो टेढ़ा मेढ़ा चले, सीधा सीधा ऊपर ना आए तो कभी भी वो अपने जीवन को ऊंचा नहीं उठा सकता। ऐसे ही जब तक हम अपने जीवन का टेढ़ापन, अपने जीवन की उलझन नहीं छोड़ते हैं और जीवन को सरल नहीं बनाते हैं तब तक हमारा जीवन भी अच्छा नहीं बनता। जब वह बीज अंकुरित होकर ऊपर निकलता है तब देखें कि उसके उन बीज के ऊपर थोड़ी सी मिट्टी दोनों तरफ चिपकी रहती है। यदि वो नहीं हटे तो बीज जमीन से ऊपर नहीं आ पाता, और जमीन से ऊपर नहीं आता तो उसे सूरज की रोशनी नहीं मिलती। ठीक इसी तरह जब तक हमारी मलिनताएं नहीं हटती तब तक हम सच्चाई को प्राप्त नहीं कर सकते। तब हमने सीखा कि हम अपने मलिनताओं को हटाएं और सच्चाई को हासिल करें। वो पौधा बहुत नन्हा सा है, यदि उसके तारों तरफ एक बाउंड्री बाल नहीं होगी, एक घेरा नहीं होगा, तो अभी कोई गाय निकलेगी और उसका पैर पड़ेगा और वो नन्हा सा पौधा नष्ट हो जाएगा। जीवन में ऐसे ही जब हमारे भीतर सच्चाई आती है और यदि हमने अपने चारों तरफ अपनी मर्यादाएं निर्धारित नहीं की, अपने जीवन को नियंत्रित नहीं किया, तो वो सच्चाई हमारे हाथ से गायब हो जाती है। और जैसे उस वृक्ष को बढ़ने के लिए सब कुछ सहन करना पड़ता है, पानी भी गिरता है, धूप भी पड़ती है, ठंड भी आती है, वो सब सहन करता है, ऐसी ही तपस्या जब हमारे जीवन में आती है, जैसी तपस्या वो छोटा सा पौधा वृक्ष बनने के लिए करता है, वैसे हम अपने जीवन को भी बहुत ऊंचा उठाने के लिए तपस्या करें। और जब वो वृक्ष एक दिन बड़ा हो जाता है, वो नन्हा सा पौधा वृक्ष में कन्वर्ट हो जाता, तब कितने फूल खिल जाते हैं उसके ऊपर, लेकिन वो अपने पास बिल्कुल नहीं रखता, वो उनको देना शुरू करता है, सुगंध फैलना शुरू होती है, फूल गिरना शुरू होते हैं, वृक्ष के नीचे की सारी जमीन, जिस जमीन में उसने अपने को ऊंचा उठाया है, जिन लोगों की मदद से उसने अपने जीवन को ऊंचा उठाया है, उन सब के प्रति वो देता है। और यहां ऐसे ही हमारे जीवन में भी यदि हम चाहें तो उस तपस्या के द्वारा अपने जीवन को ऊंचा उठाकर अपने जीवन में जो हासिल करें, तो ध्यान ये रखें कि किन लोगों की मदद से हमने अपने जीवन को ऊंचा उठाया, उनको वापस सब लौटाना है। यही तो हमारे जीवन में त्याग है। और फिर वृक्ष सारे फूल गिर जाने के बाद भी प्रसन्नचित्त होकर के कि मेरा था क्या यहां, और शांत भाव से खड़ा रहता है, अत्यंत अकिंचन होकर के भी खड़ा रहता है, और इतना ही नहीं, अपनी छाया में जो आता है उसे कभी इनकार नहीं करता, वो सबको अपनी छाया देता है, सबके प्रति उसके मन में निर्मलता का भाव है। ये जो सबके प्रति निर्मलता का भाव है, वो जो सबके भीतर हमने ब्रह्म को देख लिया है, वही तो हमारा ब्रह्मचर्य है। अगर हम देखें तो एक बीज ने जिस तरह से वृक्ष बनकर अपने जीवन में ऊंचाई हासिल की, हम भी पिछले 10 लक्षण पर्व में अगर ऐसी ही अपने जीवन के उत्थान की यात्रा करें तो आज बस इतना और शेष रहा है। हमने वृक्ष के समान अपने जीवन को ऊंचा तो उठा लिया है, पर उसमें जो फल लगे हुए हैं मीठे मीठे, वो आज सबको बांटने का दिन है। क्षमावाणी, अपने जीवन में जो हमने हासिल किया है, जो मीठापन हमारे जीवन में आया है, वो हम सबको बांटते हैं। भैया, दो शब्द मीठे किसी को आपने दिए हैं तो वो बहुत सारे उपहारों से भी बड़े हैं, और शायद इसीलिए ये दिन रखा गया कि हम अपनों के पास जाएंगे और उनसे दो मीठे शब्द बोलेंगे। जो पराए हैं, जो शत्रु हैं, जो मेरे से शत्रुता रखते हैं, मैं उनसे शत्रुता नहीं रखूंगा। आज अपनी तरफ से शत्रुता को समाप्त करने और अपने मित्रों के प्रति अपने उपकार को व्यक्त करने का दिन है। जो मेरे अपने हैं उनके प्रति मेरा दायित्व यह है कि उन्होंने मेरे जीवन को ऊंचा उठाने में कितनी मदद की है, आज मैं उनको धन्यवाद देने उनसे दो मीठे शब्द बोलने जाऊं। और इतने ही नहीं, मैं अपने प्रति शत्रुता रखने वाले बहुत होंगे, मुझे नहीं मालूम कि मेरे प्रति कौन कौन शत्रुता रखता है, मैं किस किस के पास जाऊं कि कहीं ऐसा तो नहीं आपकी मेरे प्रति शत्रुता हो, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा। पर मैं उनके प्रति क्षमा भाव धारण कर लूं, मैं इतना तो कर ही सकता हूं। अपने मन से उनके प्रति अगर शत्रुता का कोई भाव है तो उसे हटा दूं, और जिनके प्रति मित्रता का भाव है उनसे जाकर के उसे अभिव्यक्त कर दूं। कितना बढ़िया सोच रहा होगा हमें पुराने लोगों की, इन परंपराओं में जो अच्छाइयां हैं उनको हमेशा याद रखना चाहिए, उनमें आने वाली विकृतियों को हमें हमेशा हटाते रहना चाहिए। होता है हमारी अज्ञानता से कई बार परंपराओं में कुछ चीजें ऐसी शामिल हो जाती हैं जो बाद को जाकर के उपयोगी नहीं होती, हमें उन्हें धीरे से हटा देना चाहिए, लेकिन परंपराओं को तोड़ने की परंपरा कायम नहीं करनी चाहिए। परंपराएं हमारे जीवन को ऊंचा उठाने के लिए, आज किसको मालूम था कि क्षमावनी यदि किसी ने नहीं मनाई होती, शुरू नहीं की होती, तो क्या आज हम इस तरह से एक ही जगह बैठ करके और अपने वात्सल्य को, अपने प्रेम को अभिव्यक्त कर पाते। ये हमें अभिव्यक्ति का एक अवसर इस माध्यम से प्राप्त हुआ, तो हमें इस परंपरा को हमेशा कायम रखना चाहिए। राष्ट्रपति थे लिंकन, तब उनके पास मर्सी अपील के लिए बहुत सारे सिफारसी पत्र आया करते थे, और किसी न किसी की सिफारिश होती थी उस पर कि इस व्यक्ति के अपराध को क्षमा कर दिया जाए। अपराध भी यह दोनों से होता है, जो हमारे अपने हैं उनसे भी होता है, जो हमारे अपने नहीं हैं, जो पराए हैं उनसे भी होता है। तुम अपनों से होने वाले अपराध को भी क्षमा करें, और जो हमारे अपने जिनको हम अपना नहीं मानते उनसे भी होने वाले अपराधों को भी क्षमा करें। सारे लोगों के सिफारसी पत्र के बीच एक ऐसा पत्र था जिस पर किसी की भी सिफारिश नहीं थी। सचिव से पूछा कि क्यों इस पर किसी भी की सिफारिश के हस्ताक्षर नहीं है। सचिव ने कहा कि शायद उसका कोई नहीं होगा जो उसकी सिफारिश कर सके उसके अपराध की क्षमा के लिए। तो लिंकन ने कहा कि लाओ, जहां सिफारिश के लिए कालम है वहां मैं अपने दस्तखत करता हूं, मैं इसके अपराध की क्षमा की सिफारिश करता हूं राष्ट्रपति लिंकन से। खुद राष्ट्रपति लिंकन कह रहा है कि मैं इसके सिफारिश में, क्योंकि इसका कोई नहीं है तो मैं हूं। हमारे भीतर क्या प्राणी मात्र के प्रति, जो हमारे अपने हैं उनके प्रति तो, उनके अपराध के प्रति तो क्षमा भाव धारण करने का बोध हमारे भीतर आता है, आना चाहिए, लेकिन जिनका कोई भी नहीं है उनके प्रति भी कि हमारे मन में ऐसी क्षमा का भाव नहीं आना चाहिए, जरूर आना चाहिए। भागेंदु हरिश्चंद्र बहुत बड़े साहित्यकार हुए हैं, उनके जीवन में ऐसा अवसर आया, इतनी तंगी के दिन आए कि वे अपने मित्रों और अपने पाठकों के लिए पत्र लिखते थे, लेकिन उन पत्रों को प्रेषित करने के लिए उनके पास टिकट लगाने के लिए पैसे नहीं थे, रखते चले जाते थे पत्र। और एक दिन उनके एक मित्र आए, उन्होंने देखा कि इतनी डाक टिकट के अभाव में प्रेषित नहीं हो पाई है, तो उन्होंने भागेंदु हरिश्चंद्र को उस समय डाक भेजने के लिए इतनी सारी डाक थी 5 रुपए दिए। भागेंदु जी ने उस समय भी बहुत कृतज्ञता व्यक्त की, और फिर दिन बदले स्थिति सुधर गई, तो भागेंदु जी को जब भी वो मित्र मिल जाते तो धीरे से उनके जेब में 5 रुपए रख देते। एक बार, दो बार, 4 दफे ऐसा हुआ, चौथी दफे जब भागेंदु ने उनके मित्र के पॉकेट में धीरे से 5 रुपए रखना चाहे तो उन्हें हाथ पकड़ लिया कि क्या करते हैं आप, मैंने तो आपको 5 रुपए देकर आपका सहयोग किया था, मैंने कोई आपका ऋण तो चुकाया नहीं था, आप तो मेरे ऋण की तरह उससे चुका रहे हैं मेरे सहयोग को, मुझे लगता है कि अब आपसे मुझे मिलना बंद करना पड़ेगा। तो मालूम भागेंदु हरिश्चंद्र ने क्या कहा, उनकी आंखें भर आई और उन्होंने कहा कि मित्र, मैं पूरी जिंदगी रोज भी तुम्हें 5 रुपए दूं तब भी तुम्हारे उन 5 रुपये को नहीं चुका पाऊंगा जब मुझे जरूरत थी तुमने दिए थे। हम लोग अपनों के उपकार को कितनी जल्दी भूल जाते हैं, हमारे ऊपर किसी ने एक उपकार किया है तो हमें उसे, हम रोज भी अगर एक उपकार उसके ऊपर करें तब भी उस उपकार को हम चुका नहीं पाएंगे जो कभी कोई हमारे ऊपर करता है। आज का दिन अपने मित्रों और अपनों के उपकार को स्मरण करने का दिन है, और आज का दिन अपने शत्रुओं की शत्रुता को भुला देने का दिन है। यदि हम ये दो काम कर सकें, अपने मित्रों के उपकार को आज याद कर सकें और उनसे जाकर के गले मिल सकें, और आज अपने शत्रुओं के जो अपकार हैं हमारे ऊपर उन अपकारों को भुला सकें, तो शायद हमारा ये क्षमावाणी पर्व सार्थक होगा। आप सबने बहुत प्रयत्न करके और इतनी सहजता से, हमारा बहुत मन था, हमें ऐसी बातों में बहुत अच्छा लगता है बोलना और सुनना, इस समारोह में ये आवश्यक नहीं था, इस समारोह की उपलब्धि बहुत अच्छे बोलने से नहीं है, इस समारोह की उपलब्धि तो बहुत अच्छे से मिलने की है। सो हम सब ने बहुत अच्छे से मिल लिया, हमें इस बात का हमेशा स्मरण रहेगा। अगर ऐसा ही हम सब एक दूसरे के साथ हिल मिल करके जीना सीख लेवें, यहां तक कि जैसे महाराज ने कहा कि हम एक इंद्री के साथ भी जीते हैं, वे एक इंद्री जीव हमारे साथ निर्वाह कर लेते हैं, हम उनके साथ निर्वाह नहीं कर पाते हैं, यहां कितने जीव हैं जो हमारे साथ जीते हैं, हम उनके साथ भी जीना और हिलमिल करके जीना अगर सीख लेवें तो ये हमारा पर्व सार्थक होगा। इसी भावना के साथ कि हम सब अपने जीवन को अच्छा बनाएं और अपने जीवन में कृतज्ञता जैसे श्रेष्ठ गुण को धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज,
परमेश्वर शाश्वत सुख दर्शक यज्ञ नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग दर्शन करने वाला। शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक बोता हूँ तुम चिंतन करते हो
करते
समतारस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में
महाराज समस्त महाराज समस्त महाराजों के चरणों में अमर बत्ता